सी वायसी आवाज के अगले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं विकी रॉय, जो कि एक डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफर हैं। विकी 2014 में MIT के मीडिया फेलो रह चुके हैं और 2016 की फोर्ब्स एशिया की 30 Under 30 लिस्ट में भी रह चुके हैं। विकी का ज्यादातर काम बच्चों के साथ ही रहा है और इन्होंने अलग अलग जगहों पर बच्चों को जाना है और उनके साथ काफी समय बिताया है। और आज के पॉडकास्ट में हम विकी के इन्हीं एक्सपीरियंसेस की बात करेंगे। विकी, थैंक यू सो मच CCYSE आवाज पर आने के लिए।
थैंक यू सो मच संजना इनवाइटिंग मी हियर टू शेयर माय एक्सपीरियंस विद एवरीवन।
थैंक यू विकी। जैसा कि हम जानते हैं, आपकी शुरू से जितनी भी एग्जीबिशंस रही हैं या आपकी किताब भी बच्चों की जिंदगी के बारे में ही रही है। आपका फोटोग्राफी में इंटरेस्ट कैसे बना और आपने शुरू से ही बच्चों को अपना सब्जेक्ट क्यों बनाया?
जब मैं स्टार्टिंग में अपने NGO में आया था सलाम बालक में, मैं 2000 में आया था सलाम बालक में, और उस टाइम पे एक फोटोग्राफी वर्कशॉप हो रहा था सलाम बालक ट्रस्ट में, और मैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। बट जब मैं वहाँ पे रहना चालू किया और सेंटर होम में, और जब मैं क्लास 10th में आया, और 10th के बाद मेरे NGO के टीचर ने कहा कि आप पढ़ाई में अच्छे हो नहीं तो आप अपना ट्रैक चेंज करो और कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग करो। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप कुछ TV मैकेनिक का कोर्स कर लो, कुछ सिलाई कोर्स कर लो, कुछ कुकिंग का कोर्स कर लो। तो मैंने अपने टीचर को कहा कि सर मुझे फोटोग्राफी करनी है, क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग में सलाम बालक आया था और जिस वर्कशॉप में जो मेरे बाकी फ्रेंड पार्टिसिपेट किए थे वो अपने एग्जीबिशन के लिए इंडोनेशिया श्रीलंका गए थे, तो मेरे दिमाग में ये था कि अगर फोटोग्राफी करूंगा तो शायद घूमने फिरने को मिलेगा। तो मैंने ऐसे ही लालच में अपने टीचर को कहा था कि सर मुझे फोटोग्राफर बनना है, क्योंकि दिमाग में था कि फोटोग्राफी करने से घूमने फिरने को मिलेगा। बट ये नहीं पता था कि मैं फोटोग्राफर बन जाऊंगा। मुझे लगता था कि मैं हमेशा एक अच्छा असिस्टेंट बन सकता हूँ, बिकॉज मैं सिर्फ क्लास 10th तक पढ़ा हूँ, तो मतलब ये मैं ड्रीम नहीं कर सकता था कि मैं फोटोग्राफर बन जाऊंगा। मुझे लगता था कि मैं हमेशा एक अच्छा असिस्टेंट ही बन के रहूंगा। तो जब मैं फोटो खींचना चालू किया और जब मैं कुछ एग्जीबिशंस देखा स्टार्टिंग में, कुछ बुक्स देखा, तो सारे देखा कि वो किसी ना किसी कहानी पे है। तो जब मैंने डिसाइड किया कि यू नो मुझे भी किसी कहानी के ऊपर फोटो खींचनी है, तो मेरे लिए सबसे इजी एक्सेस था कि मैं अपने शेल्टर होम में या तो स्ट्रीट में बच्चों की फोटो खींचूं। तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं अपनी लाइफ दिखाऊं लोगों को कि मैं स्ट्रीट पे किस तरीके से रहता था, और दूसरों का फोटो बट अपनी लाइफ दिखाऊंगा उन फोटोज के थ्रू, कि मैं बचपन में स्ट्रीट पे या प्लेटफॉर्म पे या फ्लाईओवर के नीचे किस तरीके से रहता था। तो मैं दूसरे बच्चों की फोटो खींचता था बट उसके थ्रू मैं अपनी लाइफ दिखाने की कोशिश कर रहा था, और क्योंकि ये मेरे लिए सबसे इजी एक्सेस था, क्योंकि उस समय मेरे पास कुछ किराए नहीं होते थे कहीं जाने के लिए और एक्स्ट्रा पैसे नहीं होते थे, तो मेरे लिए सबसे इजी था कि मैं वॉक करते हुए ये फोटोज खींच लूँ, या तो अगर मुझे नई दिल्ली भी जाना होता था तो मैं उस समय मेहरोली में रहता था, लाडोसराय में रहता था, तो मैं बस में चढ़ता था एंड 2 रुपए की टिकट लेके सबसे पीछे जाकर बैठ जाता था ताकि कंडक्टर को पता ना चले, और मैं फिर लास्ट स्टॉप पे जाकर के उतरता था। तो जाके मैं उनके साथ पहले टाइम स्पेंड करता था, लाइक मैं उनके साथ खेलता था, उनके साथ कैरम बोर्ड खेलता था बैठ के, या उनके साथ गेम खेलता था, या उनको अगर मैं CP में शाम को मिलता था तो मैं उनके साथ बैठ के आइसक्रीम खाता था पहले, एंड फिर मैं उनकी फोटोज खींचता था। तो उसमें फिर वो लोग, आप अगर मेरे स्ट्रीट ड्रीम्स के फोटो देखोगे तो आप देखोगे कि ज्यादातर पिक्चर में वो मेरे कैमरे में नहीं देख रहा है, वो बेसिकली अपने लाइफ में इंजॉय कर रहा है, और वो मुझे नहीं, वो मेरी प्रेजेंस आपको वहाँ पे नजर नहीं आएगी कि मैं वहाँ पे हूँ। तो इतना उन्होंने मुझे एक्सेप्ट कर लिया था।
थैंक यू विकी हमारे साथ ये शेयर करने के लिए। यानी कि आप ही के बचपन के एक्सपीरियंसेस ने इस चीज को काफी इन्फ्लुएंस किया कि आप किसकी फोटो खींचते हैं, कैसे खींचते हैं, स्टाइल क्या होगा, टेक्निक क्या होगी।
तो यू नो कि जैसे क्या खींचना है वो मैं क्लियर था कि मुझे क्या खींचना है। तो बेसिकली जब मैं उन बच्चों को स्टेशन पे जाकर के मैं शूट करता था, तो मैं अपनी चाइल्डहुड रिमेम्बर करता था कि मैं जब स्टेशन पे रहता था तो यू नो ट्रैक पे इस तरीके से चलता था, मेरे हाथ में बोरी होते थे जिसमें मैं पानी की बोतल इकट्ठा करता था, मैं वॉशिंग लाइन में किस तरीके से नहाता था। तो ये सारी चीजें मुझे पता था क्योंकि मैं वो लाइफ जी चुका था। तो मैं दोबारा से जब ये लोग वही सेम चीज रिपीट करते थे तो मैं बस उसको फॉलो करता था, क्योंकि मुझे पता है कि ये स्टेशन पे अगर रह रहे तो लाइफ वो सेम जी रहे, ठीक है। तो क्योंकि वही उनको वॉशिंग लाइन पे नहाना होता था, वही उनको बोतल कलेक्ट करना होता था, वही उनको जाकर के बोगीज में बेचना होता था। तो आई नो कि ये सेम लाइफ है बट टाइमिंग अलग है बस। तो मैं बस उनको फॉलो करता था और उन सब चीजों को फोटो खींचता था मैं, वो जो जो कर रहे उन एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करता था। स्टाइल तो ऐसा हमने कुछ डेवलप नहीं किया था, बिकॉज मैं सिचुएशन पे मौजूद होता था और क्या कहते हैं कि उस सिचुएशन में मैं देखता था कि सबसे अच्छा मुझे क्या लग रहा है या जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ इस फ्रेम के अंदर। तो कोई भी जब ये फ्रेम देखे तो सबसे पहले उसकी नजर वहां पे जाए जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा, एंड देन उसके बाद बाकी फ्रेम के हिस्से पे उनका ध्यान जा सकता है कि यू नो कि फ्रेम में और क्या चीजें हैं क्या नहीं है। बट मेन फोकस हमेशा यही रहता था कि मैं क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जब भी लोग फोटो देखे तो सबसे पहले लोगों का आंख उस जगह पे जाए एंड उसके बाद बाकी पार्ट्स में जाए उसके। तो ये उसके लिए मतलब कोई स्टाइल डेवलप नहीं किया था, क्योंकि फोटोग्राफी में जब खींचना चालू किया था तो लोग बात करते थे कि यू नो रूल ऑफ थर्ड होना चाहिए, लीडिंग लाइन होना चाहिए। तो इन सब की समझ नहीं थी मुझे और ये सब मेरे पल्ले भी नहीं पड़ता था उस समय। तो मैंने कभी ध्यान नहीं दिया इन सब चीजों की, यू नो कि बट वो फोटोज में अपने आप ही आ गया, क्योंकि इतने प्रैक्टिस किया था, इतने फोटो खींचा था कि अपने आप वो फोटो में कहीं ना कहीं आ जाता है। तो वो प्रैक्टिस से आ गया, मैंने बहुत प्रैक्टिस किया वो।
जी, थैंक यू विकी। इस पूरे प्रोसेस में बच्चों के साथ इतना समय बिता के आपने उनके बारे में और उनकी आइडेंटिटी के बारे में, उनके आपस में एक दूसरे के साथ जो दोस्ती रहती है, जो रिलेशनशिप्स रहते हैं, उसके बारे में क्या सीखा?
पूरे प्रोसेस में जैसे मुझे लगता था कि मैं अपना बचपन अच्छे से नहीं जिया हूँ, क्योंकि कभी स्ट्रीट पे रहा हूँ, कभी शेल्टर होम में रहा, एंड देन उसके बाद 17 साल की उम्र में काम करना चालू कर दिया था। तो एक तो ना लाइफ को एंजॉय करना सीखा उनके साथ, ठीक है, कि लाइक हम बहुत टाइम लोगों को लगता है कि यू नो कि ये अगर स्ट्रीट पे रह रहा या ऐसे रह रहा तो बड़ी दुख भरी लाइफ है ये है, बट बहुत टाइम हो सकता है कि वो हमारे लिए लग्जरी है, ठीक है। जैसे अगर मैं स्ट्रीट पे रहता था, मतलब स्टेशन पे रहता था, तो हमें राजधानी शताब्दी ट्रेन आके जब रुकती थी तो उसके पेंट्री कार में बहुत खाना बच जाता था, हम वो खाना जाके ले लेते थे, वो मना नहीं करते थे, तो हमारे लिए वो लग्जरी था, ठीक है। तो हम इंजॉय करते थे एक एक मोमेंट को, भले दूर से ऐसा लगता है कि यू नो वो स्ट्रीट किड्स है या वो ऐसे सो रहा या ऐसे जी रहा, बट हमारे लिए लग्जरी था कि हम लेट तक सोए, हमें कोई मना करने वाला नहीं है, ठीक है। हम 10 बजे सो के उठे, 12 बजे सो के उठे, हमें कोई मना करने वाला नहीं है, ठीक है। तो एक एक मोमेंट को वो इंजॉय कर रहे थे, ठीक है। और जब मैं उनके साथ इन्वॉल्व हो रहा था तो मैं उन उन छोटी छोटी चीजों को मतलब जितने देर रहता था तो इंजॉय करता था उनके साथ, कि अगर जैसे आइसक्रीम खिलाने के लिए मैं उनको लेके जाता था, नहीं भैया मैं ये वाला नहीं खाऊंगा, मैं ये दूध वाली लूंगा, मैं ये चॉकलेट वाली लूंगा, ठीक है। तो मैं उनको बोलता था नहीं मेरे पास इतने पैसे नहीं है, तो मैं ये ऑरेंज वाला ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें भी एक फन था, एक एंजॉयमेंट था कि वो कितना खुश हो जाते थे, एक्सप्रेशंस बदल जाते थे, तो अच्छा लगता था।
जी जी बिल्कुल। और उनकी आपस की दोस्ती, एक दूसरे के साथ इंटरैक्शन, फ्रेंडशिप, उसके बारे में आपने क्या देखा?
मैं देखता था उस टाइम पे कि बेसिकली किसको किस तरह का लाइफ स्टाइल जीना है उसके ऊपर उनकी ग्रुप और फ्रेंडशिप बनती थी। जैसे मान लो कि किसी को नशा करना है तो वो जो बाकी नशा करने वाले बच्चे हैं उनके साथ उठना बैठना पसंद करते हैं, उनके साथ खाना पसंद करते हैं, उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं। और उसी में बहुत सारे बच्चे होते हैं जो डिसाइड कर चुके होते हैं कि नहीं मुझे नशा नहीं करना है, तो वो उस ग्रुप से तो हमेशा थोड़ा सा दूरी बना करके रहते थे। तो उसका जो ग्रुप बनता था तो वो हमेशा वो नॉन एल्कोहलिक वाला या बिना नशा करने वाला, वो सारे इनको ज्वाइन करते थे। तो ये ज्यादा खा पी के इंजॉय करने वाले, पैसा है तो किसी ढाबे में जा करके नॉन वेज खाना, ये करना वो सब, और तो दारू वालों से ये थोड़ा दूर रहते थे, तो इस तरीके से इनका ग्रुप बनता था और डिवाइड होता था।
थैंक यू विक्की। मेरा अगला प्रश्न बच्चों के फोटोज लेने के एथिकल सवाल पे है, क्योंकि ऐसे केस में बच्चे अपनी बात खुद नहीं रख रहे, एक फोटोग्राफर उनकी कहानी बता रहे हैं। ऐसे में फोटोग्राफर की क्या जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, और क्या वो हमेशा इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा पाते हैं?
सो यू नो, दो चीजें, जैसे मैं अपना दो एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैं जैसे अभी थोड़े टाइम पहले रशिया गया था, मुझे वहाँ पे स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल वर्ल्ड कप हो रहा था, और मुझे उस फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए आर्ट फोटोग्राफी के लिए बुलाया था स्ट्रीट चाइल्ड यूनाइटेड ने। तो क्या था कि जब मैं ग्रीन रूम में एक बच्चे का मैं फोटो खींच रहा था फुटबॉल उसके फेस के सामने रख के, ठीक है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन था उनके टीम से एक जन आया, वहां पे देखा कि मैं फोटो खींच रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि विक्की, आप किसी सिंगल लड़के को रख के आप फोटो नहीं खींच सकते हो। मतलब ये नहीं कि नहीं खींच सकते, बट ये है कि वो कह रहे कि कोई स्टाफ या दो तीन लोग होने चाहिए, भले आप एक का फोटो खींचो। तो उसके बाद ना मुझे थोड़ा सा डर सा लगने लग गया कि मैं किसी बच्चे को बुलाऊं या नहीं बुलाऊं, शूट करूं या नहीं करूं, ठीक है। तो दैट्स आई अंडरस्टैंड कि एनजीओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है, बट बहुत टाइम आप जो चीजें चाहते हो कि यू नो वो इमोशन आए फोटो में या वो एक ठहराव आए फोटो में, तो वो बहुत टाइम, अगर मान लो कि मैं कहीं पे किसी का फोटो खींच रहा हूँ, तो बहुत टाइम अगर कोई अगर बंदा वहां पे प्रेजेंट हो ना, तो वो उस तरीके का एक्सप्रेशन नहीं देते या उस तरीके से बिहेव नहीं करते कि आप जो फोटो में चाहते हो वो आपके फोटोज में आ जाए। तो जैसे बहुत टाइम मैं शूट करता हूँ तो मैं अकेले शूट करना पसंद करता हूँ, मैं अपने असिस्टेंट को भी नहीं लेकर के जाता हूँ साथ में, क्योंकि मुझे पता है दो लोग रहने से सामने वाला बंदा थोड़ा सा एक्सप्रेशन बदल जाते हैं, और वो फिर रियल एक्सप्रेशन नहीं होते, बिकॉज उनको पता है कि दो जन यहाँ पे खड़ा है तो ये कुछ फोटो खींच रहा, तो वो थोड़ा नकली सा बिहेव करने लगते हैं। तो कोशिश करता हूँ कि अकेले जाऊँ। तो एक ये मेरा एक्सपीरियंस रहा था रशिया में। फिर मैं अभी सेव द चिल्ड्रेन के लिए एक असाइनमेंट शूट कर रहा था, द इनविजिबल, एंड उसका कॉन्सेप्ट ये था कि जो बहुत सारे स्ट्रीट कनेक्टेड बच्चे होते हैं, उनके पास कोई आईडी प्रूफ नहीं होता, एंड आईडी प्रूफ ना होने के वजह से वो लोग अपने आप को हमेशा कमजोर पाते हैं। तो सेव द चिल्ड्रेन उनको आधार कार्ड के थ्रू एक आईडी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे 10 राज्य और सॉरी 4 राज्य में 10 सिटी 10 शहर शूट करने के लिए दिया था, और हर एक शहर में उन्होंने मुझे पांच पांच लड़के को 2 साल तक फॉलो करने के लिए दिया था। तो जब मैं पहली बार शूट किया उन बच्चों का, तो मेरे फोटो भी जैसे होता ना कि मैं एज ए टूरिस्ट कहीं पे गया और मैं किसी को शूट किया, तो मेरे पिक्चर में वो वाली फीलिंग थी एज ए एक थोड़ा सा टूरिस्टिक टाइप की, कि मैं गया हूँ, बिकॉज मुझे इनसाइड अंडरस्टैंडिंग जल्दी कनेक्ट नहीं हुआ था। जब फर्स्ट विजिट के बाद उनसे दोस्ती हुई, उनके साथ खाना खाया, उनके साथ चीजें शेयर किया, और उसके बाद फिर जब मैं सेकेंड टाइम गया, सो दे नो मी कि यू नो कि मैं पिछले बार भी आया था, इस बार भी आया हूँ, एंड फिर उनके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड हुआ। फिर तीसरी चौथी बार में दे टोटली एक अंडरस्टैंडिंग बन गई थी। जैसे मैं उनको बोलता था कि आप घर में जब कोई नहीं होता है तो खाली टाइम में कैसे पढ़ते हो या किस तरीके से पढ़ते हो, तो वो अपने रियल सिचुएशन में मुझे एक्ट करके दिखा देते थे कि यू नो कि हम कोने में इस तरीके से बैठ जाते हैं या चटाई बिछा करके इस तरीके से ये करते हैं, तो वो फिर चीजें मुझे एक्सप्लेन करके बिल्कुल अच्छे तरीके से बताते थे, या तो दरवाजे के कोने में इस तरीके से बैठ जाते हैं, या तो चूल्हे के पास इस तरीके से बैठ करके शाम को डिबिया जला के इस तरीके से पढ़ते हैं। तो वो फिर थोड़ा रियलिस्टिक टाइप के फोटो मेरे आने चालू हो गए थे, क्योंकि मैं जितना जितना ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा था उतना मैं इनसाइड डेप्थ घर के चीजों का पता चल रहा था, सिचुएशन पता चल रहा था, उनका लाइफ स्टाइल पता चल रहा था, उनके थॉट्स पता चल रहा था, वो किस तरीके का पर्सन है वो पता चल रहा था, एंड वो सारी चीजें फोटो में दिखना चालू हो गया था।
यानी कि किसी जगह की या किसी व्यक्ति की जो ऑथेंटिसिटी या जो उसकी सच्चाई है, आप उसे फोटो में लाने की कोशिश करते हैं,
प्लस कि वो किस तरीके का पर्सन है। ठीक है, जैसे बहुत टाइम क्या होता है कि मान लो कि हमने कहीं पे भी कैसा फोटो खींच लिया, बट ही इज नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन या दैट काइंड ऑफ कैरेक्टर या लाइफ स्टाइल उसका वैसा नहीं है। तो जो जितना रियलिस्टिक जितना रियल है वो चीजें मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्या होता है कि जैसे हम जितना टाइम स्पेंड करते हैं तो उसके बारे में उतना जान जाते हैं, उनके घर के बारे में सबके। तो आप देखिएगा कि कोई कोई फोटोग्राफर होता है वो अपने फोटोज के बारे में घंटों बात कर सकता है। वो इसलिए बात कर सकता है क्योंकि उसने उस सब्जेक्ट के साथ उतना टाइम स्पेंड किया होता है। लेकिन जैसे बहुत टाइम हमें राह चलते हुए कुछ अच्छा दिखा और हमने फोटो खींच लिया, और अगर आप उस फोटोज के बारे में मेरे से पूछोगे तो मैं बोलूंगा कि मैं मेहरोली में जा रहा था और वहां पे मुझे ये बच्चे दिखे और मैंने ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मैंने इस वजह से खींच लिया। उसके अलावा मेरे पास कोई स्टोरी नहीं होता बताने के लिए। बहुत टाइम जैसे मैं अपने आप को डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफर बोलता हूँ, तो मैं डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी में हम मतलब कहते हैं कि आपको अपने एक सब्जेक्ट में हम बहुत टाइम तक फोटो खींचते हैं, एंड तो इसीलिए हमें अपने सब्जेक्ट के बारे में बहुत नॉलेज हो जाता है और हम उसके बारे में घंटों बात कर सकते हैं।
जी बिल्कुल, ये एक काफी जरूरी और इम्पोर्टेंट बात है और थैंक यू सो मच इसको हाईलाइट करने के लिए। विकी, आप जिन बच्चों की फोटो खींचते हैं वो मोस्टली माइनर होते हैं, उनकी आयु 18 वर्ष से कम होती है, तो इन फोटोज को इंटरनेट पे डालने के लिए या किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर शेयर करने से पहले लीगल एस्पेक्ट का क्या ध्यान रखते हैं आप, परमिशंस वगैरह को लेकर? और क्या कभी कुछ ऐसा हुआ है जब आपको परमिशन ना मिली हो या किसी ने ऑब्जेक्ट किया हो अपनी फोटोज डालने के लिए?
तो यस, तो क्या होता है कि जब क्योंकि मैं ज्यादातर एनजीओस के लिए अब काम करता हूँ, तो मैं लाइक यूनिसेफ, WHO या सेव द चिल्ड्रेन या और भी ऑर्गेनाइजेशन है अपने आप, इन लोगों के लिए शूट करता हूँ मैं। तो क्या होता है कि हम जो एनजीओ का हेड है उससे ऑथेंटिक उस पर साइन करवा लेते हैं या किसी कम्युनिटी में जा करके शूट कर रहे हैं, तो हम उनके मम्मी से या उनके बड़े भाई से या उनका कोई ना किसी रिलेटिव से साइन करवा लेते हैं। और अगर किसी का पेरेंट्स वगैरह काम पे गया होता तो जो वहाँ का जो एरिया का सोशल वर्कर होता है उससे हम साइन करवा लेते हैं। तो अभी तक तो इस तरह का कोई इशू हमने वो नहीं किया, मैंने मतलब फेस नहीं किया हूँ, क्योंकि हमने कभी किसी नेगेटिव टर्म में किसी चीज को नहीं दिखाया है। तो दैट्स व्हाई मुझे लगता है कि मुझे अभी तक इस तरीके का कोई इशू आया नहीं है। अब जैसे मेरा अभी एक एग्जीबिशन चल रहा है, उस एग्जीबिशन का नाम है बचपन वडेरा आर्ट गैलरी में, तो वो मैंने एनजीओ से अलग मतलब जैसे मेरे ट्रेवल के दौरान मैंने वो फोटोज खींची है। तो अब वो फोटो मैंने जितने फोटो देखोगे वो सारे ग्रुप में है, मतलब किसी में 20 लोग है, किसी में 6 लोग है, किसी में 8 लोग है। तो उसमें पॉसिबल नहीं है कि मैं एक एक का पेरेंट्स से जाकर के साइन करवाऊं। बट एज ए फोटोग्राफर मुझे पता है कि अगर मैं कोई नेगेटिव चीज नहीं दिखा रहा हूँ तो मुझे उस चीज से फिर उतना डरना घबराना नहीं चाहिए।
विकी, मैंने आपके कई प्रोजेक्ट्स फॉलो किए हैं और मैंने देखा है कि आपका काम ज्यादातर किसी एनजीओ के साथ या किसी संस्थाओं के साथ होता है जो बच्चों के लिए फंड रेजिंग कर रही हो या किसी समस्या को हाईलाइट कर रही हो। जैसे थोड़े समय पहले एक कैंपेन था जिसमें स्कूल के बच्चे साइन बोर्ड पर लिखकर खड़े थे कि मैं चीफ मिनिस्टर बनना चाहता हूँ या मैं कलेक्टर बनना चाहता हूँ, और इसके थ्रू आपने इनके लिए और इनके स्कूल के लिए भी इनके लिए कुछ फंड रेजिंग की गई। तो आपकी रुचि ऐसे प्रोजेक्ट्स में कैसे बनी और इसी तरीके के प्रोजेक्ट्स करने का मोटिवेशन क्या रहता है आपका?
सो जैसे मान लीजिए कि एक चीज जैसे स्कूल टाइम में हमें सिखाया गया था कि कि आप देश के तरक्की में कैसे योगदान कर सकते हो, ठीक है, तो हमारे पास कोई जवाब नहीं था। तो लाइक टीचर ने कहा था कि सबसे पहले आप अपनी तरक्की करो, आप खुद तरक्की कर लोगे तो देश से एक गरीब कम हो जाएगा, एंड उसके बाद आप दूसरों के लिए सोचना। तो जो मेरी 2014 तक की जर्नी है, जब तक मैं MIT मीडिया लैब का फेलोशिप मिला था तब तक मैं अपने आप को डेवलप कर रहा था, और मैं उस दौरान ये नहीं बोल सकता था कि मैं इससे उसकी मदद करना चाहता हूँ, ये मदद करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं खुद ही डेवलप नहीं था तो मैं दूसरों की मदद क्या करूंगा। तो फिर जब MIT के फेलोशिप के बाद, मेरे फर्स्ट बुक के बाद, जब मैं मुझे लगा कि सोसाइटी ने इतना कुछ दिया है मुझे, तो मैं अपने फोटोग्राफी के थ्रू सोसाइटी को रिटर्न कैसे दूं, तो तब इस तरीके का आइडिया आया कि जैसे लोग मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हैं थोड़ा सा, तो मुझे उस चीज रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास था। तो इसीलिए जब मैं रूलर चेंज मेकर ये कैंपेन किया था, तो उसमें हमने ये किया था कि हम कैसे इनको मदद कर सके। तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना ये जो लाइफ में करना चाहते हैं या जो लाइफ में इनकी प्रॉब्लम है, हम वो बातें स्केटबोर्ड पे लिख दें और सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं। तो जैसे एक लड़की कह रही है कि हमारे स्कूल में पंखे होना चाहिए, तो मैंने उसको शेयर किया, तो एक दोस्त ने पंखे डोनेट कर दिया। एक लड़का कह रहा कि मैं पढ़ लिख कर गाँव का मुखिया बनना चाहता हूँ, एंड जब मैंने वो फोटो शेयर किया, तो मेरे एक ट्रस्टी है, उन्होंने उस लड़के को 2 लाख रुपए की स्कॉलरशिप दी आगे पढ़ने के लिए। तो ऐसे मैंने कई सारे इनिशिएटिव किया फोटोग्राफी के थ्रू। एक फैमिली का परचून का दुकान खुलवाया जय राजस्थान में। तो जो जो मुझे लगता है कि, और ये ऐसा नहीं कि कि मैं फोटोज मेरा हेल्प कर रहा है इस तरह के इनिशिएटिव को मदद में, बिकॉज लोग फिर एक्चुअल में चीजें देख रहा, लोग एक्चुअल में देख रहा कि वो मदद उनकी पहुंच रही, क्योंकि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जानता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि जब भी इस तरीके से कोई मदद करता है, तो मैं तुरंत सारा डिटेल्स, नेक्स्ट फोटो की उसका ये हो गया, ये लग गया, सो दे नो कि पैसा यूज हुआ है। तो लोग आंख बंद के फिर ट्रस्ट करते हैं और सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं।
थैंक यू विकी हमारे साथ ये शेयर करने के लिए, और आपके ये सभी एफर्ट्स बहुत ही सराहनीय हैं और बहुत कमेंडेबल हैं, और हम इस चीज़ को देख पा रहे हैं और अप्रिशिएट कर पा रहे हैं कि आप अपने प्रोजेक्ट्स कैसे चुनते हैं और उसके पीछे का भाव क्या रहता है। विकी मेरा अगला सवाल है कि बच्चों का एक अच्छा डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफर बनने के लिए, उनके साथ एक बॉन्ड बनाने के लिए किन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है?
तो मुझे लगता है कि एक तो भी बचपन जब उनके साथ रहे, तो अपने आप को ज्यादा वहाँ पे टीचर बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि जैसे ही आप वहाँ पे टीचर बनने की कोशिश करोगे, तो वो डिस्टेंस बनाना चालू करेगा आपसे। तो फर्स्ट थिंग जो मुझे लगता है कि उनके सामने ज्यादा टीचर ना बन के दोस्त बनने की कोशिश करें। अगर जैसे आप उनके फ्रेंडशिप में वो आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वो फिर खुल के आपको अलाउ करेगा, अपने इनसाइड हर चीज दिखाएगा, बताएगा, डिस्कस करेगा। तो मुझे लगता है कि वो जैसा है वैसा बनने की कोशिश करना चाहिए उस दौरान। और जैसे जब मैं इस तरह के जगहों पे शूट पे जाता हूँ, तो मैं कोई शो ऑफ नहीं करता हूँ कि आज जिनसे उनको लगे कि इनका पहनावा अलग है और ये तो बिल्कुल ऐसा बिहेव कर रहा। ठीक है, मैं अगर वो जमीन पे बैठ के खेल रहा, तो मैं ऐसा बिहेव नहीं करूंगा कि मैं जमीन पे बैठूंगा तो मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। तो मैं उनके साथ बैठ जाता हूँ, मैं उनके साथ खेल लेता हूँ, तो वो फिर पूरे तरीके से मुझे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो और ये जैसे जैसे जितना आप उनके साथ टाइम स्पेंड करते जाओगे ना, वो अपने आप ही आपको पता चल जाएगा कि हाँ, इस चीज को ये एक्सेप्ट कर रहा। नेक्स्ट टाइम गया तो उनको प्रिंट बना के अगर फोटो दे दिए, तो वो बड़े खुश हो जाते हैं और फिर वो अलाउड करते हैं कि आओ अब इस तरीके से मेरा फोटो खींचो, इस तरीके से ये करो। तो बहुत ज्यादा वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। या बच्चों को किसी दुकान में ले जाके उनको अगर च्युइंगम भी खरीद के दे दो, या तो जैसे मेरे पास वो अब मेरे बैग में वो रहता है पल्स की टॉफी रहता है, तो मैं पल्स की टॉफी शेयर कर लेता हूँ उनके सामने, मैं भी चबा करके खाता हूँ, तो उनको वो काफी बढ़िया लगता है एंड वो एक्सेप्ट करता है चीजों को फिर।
ये एक काफी महत्वपूर्ण बात की है आपने कि बॉन्ड बनाना जरूरी है।
हाँ, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के बच्चे हो, लाइक नॉट ओनली कि लोअर कैटेगरी के, अगर जैसे आप मिडिल क्लास फैमिली हो गया या हायर क्लास फैमिली हो, उनके स्कूल में जा करके अगर शूट कर रहे हो, तो बहुत टाइम जैसे ही आप टीचर प्रोफेसर बनने के ना, तो मैंने देखा ये बच्चे भी फिर वो डिस्टेंस बनाते हैं। तो उनको चाहिए कि वो बच्चा कैसा सोच रहा है। जैसे बहुत टाइम में जाता था, तो मैं थोड़ा कभी कभी कोई बच्चा आकर के बोलता था कि भैया ये कैमरा मुझे दो, मैं भी फोटो खींचूंगा। तो मैं बोलता था कि देखो दूर ले जाने नहीं दूंगा मैं आपको, बट आप मेरे सामने एक दो फोटो खींचो, चलो मैं आपके गले में डाल देता हूँ, ठीक है। तो वो बहुत खुश हो जाता है, उनको लगता है कि अच्छा ये पकड़ के मैं भी बटन दबा सकता हूँ। नहीं तो बहुत टाइम, जैसे बहुत स्ट्रीट बच्चे, वो लगता है कि अच्छा ये सिर्फ एक क्लास के लोग ही इस तरीके का कैमरा यूज करते हैं, हम कभी ऐसे चीजों को टच कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा सा उनको फिर बहुत अच्छा लगता है कि अगर उनको अलाउड कर दो तो।
आपका ये जितना भी काम रहा है, आप इतने सालों से ये कर रहे हैं, इसका रिस्पॉन्स क्या मिला है आपको?
बहुत टाइम लोगों ने शायद मेरे काम को नोटिस किया है कि मैं हमेशा जो मेरे किसी भी बच्चों के ऊपर जब मैं शूट करता हूँ तो मैं ऐसे ही सिर्फ उनकी नॉर्मल लाइफ या ऐसे कुछ नहीं दिखा देता हूँ, मैं अपने फोटोज के थ्रू हमेशा कुछ ना कुछ मैसेज देने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे मैं पिछले साल लंदन गया था और वहाँ पे मेन वर्ल्ड कप से पहले स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा था, ठीक है। तो वहाँ पे 10 कंट्री के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो मैंने एक एक कंट्री के एक एक बच्चे को का एक एक पोर्ट्रेट खींचा। और जैसे उन्होंने ना अपने हैंड पे एक बैंड पहन रखा था और उस बैंड पे लिखा हुआ था कि आई एम समबडी, ठीक है। तो वो उस क्रिकेट के दौरान मतलब लोगों को कहने की कोशिश कर रहा था कि मैं भी कुछ हूँ, मैं आई एम समबडी। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला कि हाथ से ये बैंड निकालो और ये अपने मुंह के पास पकड़ो, और बिकॉज आप दुनिया से कह रहे हो कि यू आर समबडी। तो मैंने ऐसे 10 पोर्ट्रेट खींचे एंड वो मैंने उनको सबमिट किया। तो उनको वो बहुत अच्छा लगा वो कॉन्सेप्ट कि कि ये बच्चे पूरे वर्ल्ड से कह रहा है कि ये भले स्ट्रीट बच्चे हैं बट दे आर समबडी, वी आर समबडी, आई एम समबडी, ठीक है। तो वो कॉन्सेप्ट उनको बहुत अच्छा लगा कि मैंने उनको फोटोज में ऐसे वो बना करके दे दिया। तो ऐसे मैं कोशिश करता हूँ कि अपने फोटोज के थ्रू की जो बच्चों की बातें हैं कि उस बातों को लोगों के सामने, जैसे हमने अपना जो सेव द चिल्ड्रेन का हमारा प्रोजेक्ट है द इनविजिबल, तो वो द इनविजिबल इसी वजह से, बिकॉज मान लीजिए कि दिल्ली बॉम्बे या किसी भी शहर में हर जगह बस्ती होती है, ठीक है, हर जगह झुग्गी होती है, बट वो इनविजिबल होता है, लोग मतलब देख के इग्नोर कर देते हैं, बट वहाँ पे भी लाइफ है, ठीक है। एंड वहाँ पे भी बहुत सारे लाइफ के पास कोई पहचान नहीं है। तो जब हम द इनविजिबल प्रोजेक्ट कर रहे थे तो हमें पता था कि मुझे पता था कि कि हम उनको एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं इन फोटोज के थ्रू, एंड लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हर शहर में हर जगह पे इस तरीके के लोग रहते हैं और आप देख के इग्नोर कर देते हो, तो प्लीज आप मेरे इन फोटोज को देखिए और आप भी सपोर्ट करने की कोशिश कीजिए कि अगर आपके इलाके में भी कोई इस तरीके से रह रहा और ऐसा है तो आप जा करके कभी बात कर लो, अरे आपके पास ये आईडी वगैरह है, नहीं है, चलो मैं हेल्प कर देता हूँ, मैं आपका फॉर्म भर देता हूँ, एंड इस तरीके से ताकि दूसरे लोग भी इन्वॉल्व हो और इनकी मदद कर सके।
तो आपके काम का काफी इम्पैक्ट भी रह चुका है।
हाँ तो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास है और कोशिश करता हूँ, जैसे स्ट्रीट ड्रीम भी करने का मेन मकसद यही था कि कि लोग मेरे स्ट्रीट ड्रीम्स को देखे और जब उनको पता चले कि मैं यही सेम लाइफ जीता था और आज मैं फोटोग्राफर हूँ, तो बहुत सारे लोगों का फिर नजरिया बदल जाता है स्ट्रीट बच्चों के प्रति। तो उनको लगता है कि अच्छा हाँ मेरे यहाँ पे भी तो रहता है, तो मैं भी अगर मैं इसको कहीं पे कुछ सपोर्ट कर दूँ तो ये भी लाइफ में ऐसा कर सकता है।
जी विकी, बिल्कुल सही। थैंक यू हमारे साथ ये शेयर करने के लिए। और आपके इंस्पिरेशन कौन कौन रहे हैं फोटोग्राफी को लेके?
सो मेरा इंस्पिरेशन दो तीन फोटोग्राफर है, एक तो जैसे मेरा मेंटोर अनईमान जिन्होंने मुझे फोटोग्राफी सिखाया है, तो उनका काम, उनका स्टाइल और ये सब कुछ मुझे बहुत आकर्षित करता था। और बट जबकि मैं उनके जैसा फोटो नहीं खींचता हूँ, मैं बिल्कुल अलग जोनर की फोटो खींचता हूँ। फिर एक फोटोग्राफर थे प्रबोध दास गुप्ता, जिनको काम को मैं काफी एडमायर करता था, और उनका मैं पहली बार जब मुझे मेरे बॉस ने लाइब्रेरी भेजा था तो मैंने उनका लद्दाख का एक बुक देखा था, तो मैं बहुत इम्प्रेस हुआ था वो बुक देख करके। एंड उसके अलावा एक राम रहमान फोटोग्राफर हैं, उनको फोटोग्राफी हिस्ट्री का बहुत नॉलेज है, तो उनसे उनके साथ टाइम स्पेंड करके थोड़ा सा फोटोग्राफी हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा एक दयनीता सिंह फोटोग्राफर है, उनका काम मुझे काफी अच्छा लगता है, तो हमेशा कोशिश करता हूँ कि इन लोगों का काम देख के सीखूं और अपने काम को और इम्प्रूव कर सकूं। और बिकॉज आई नो कि बहुत सारे यंग फोटोग्राफर भी काम को फॉलो करते हैं, देखते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि कि कोई मीडियोकर वर्क प्रोड्यूस ना कर दूं। तो इस वजह से हमेशा मैं कोई सा भी प्रोजेक्ट ये करता हूँ तो उसमें काफी टाइम स्पेंड करता हूँ और इनका काम देख के जो भी सीख सकूँ और अपने काम को और इम्प्रूव कर सकूँ, तो यही कोशिश रहती है हमेशा।
थैंक यू विकी, और इसी के साथ हम आज के एपिसोड को समाप्त करते हैं। आप CCYSE आवाज के साथ जुड़े और आपने अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर किए, इतनी सारी बातें की। थैंक यू सो मच विकी, और मुझे पूरा यकीन है कि जितने भी लोग आज हमें सुन रहे हैं उन्होंने आपकी जर्नी से और आपके थॉट प्रोसेस से काफी प्रेरणा पाई है।
बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, टेक केयर, बाय।
बाय विकी, थैंक यू। दोस्तों, CCYSE में हमारा प्रयास रहता है कि हम स्कॉलर्स और प्रैक्टिशनर्स के बीच संवाद और कंस्ट्रक्टिव डायलॉग के लिए एक प्लेटफॉर्म बन सके। विकी की तरह ही ऐसे कई और प्रैक्टिशनर्स हैं जो अलग अलग भूमिका में, चाहे वे फोटोग्राफर हो, फिल्म मेकर हो, टीचर हो, बच्चों के साथ काम करके काफी अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। मुझे लगता है संवाद के सफल होने के लिए ये जरूरी है कि ये सभी लोग एक दूसरे की भूमिका को पहचान सकें, एक दूसरे के कंट्रीब्यूशन को अप्रिशिएट कर सकें और एक दूसरे के प्रोसेस से कुछ नया सीख सकें। आज CCYSE आवाज के इस एपिसोड में ट्यून इन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम आपसे अगले एपिसोड में मिलेंगे।